نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی جو ہم انشاءاللہ تعالی علم لینے جا رہے ہیں قرآن پاک کا، اس کے الفاظ کا، معنی کا، تفسیر کا. اس علم کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیسے ہم یہ کلاس لیں گے؟ سب سے پہلے تو کسی چیز کی اہمیت آپ کے ذہن میں واضح ہونی چاہیے. جب کسی چیز کو آپ اہم سمجھیں گے تبھی انسان اس کے لیے وقت بھی لگاتا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. اور اگر کوئی چیز اہم نہ سمجھی جائے تو چاہے وہ زندگی کے کوئی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اگر آپ کے نزدیک اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے تو بہت جلدی آپ اس سے کٹا جائیں گے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے اتنی محنت نہ لگائیں جتنی محنت کرنی چاہیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہت جلدی اس کو اللہ نہ کریں چھوڑ کے چلے جائیں، یا بددلی سے کریں، بوجھ سمجھ کے کریں. تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ کام ہے شوق کا، دل سے کرنے کا، محبت سے کرنے کا. کیونکہ جس کلام کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہ کلام کس کا ہے؟ کسی انسان کی بات نہیں، اللہ رب العزت کا کلام ہے. اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے سورۃ الزمر میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ کہہ دیجئے، کیا وہ جو علم رکھتا ہے اور وہ جو علم نہیں رکھتا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ علم تو روشنی ہے، علم زندگی ہے، اور جہالت اندھیرا ہے، جہالت موت ہے. تو جیسے زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتے نا، اسی طرح علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اور الحمدللہ کہ جو علم حاصل کرنا ہے نا، ہمارے دین میں اس کو بھی عبادت کہا گیا ہے. اور آپ کو پتا ہے عبادت پہ اجر ملتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم ایسے کلاس لے رہے ہیں اور اس طرح ہیں اور کوئی شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں. نہیں، اس علم کو بھی یہ سمجھے کہ یہ 3 گھنٹے میں عبادت میں لگا رہی ہوں. ہمارے دین میں جہاد کی ایک قسم ہے یہ، اور ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اس زمانے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہر آبادی میں سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا، کیوں نہیں ہے ایسے کہ ہر بستی میں سے کچھ لوگ آئیں اور علم حاصل کریں اور پھر باقیوں کو سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے علم کے اوپر اتنا زور دیا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی، ظاہر ہے سورہ فاتحہ تو پہلی وحی نہیں ہے، یہ نزول کے اعتبار سے اس کی ترتیب نہیں ہے قرآن پاک کی. جیسے اب ہم کھولتے قرآن پاک سورہ فاتحہ دیکھتے ہیں، تو سورہ فاتحہ تو بعد میں جیسے اس کی قرآن پاک کی ترتیب رکھی گئی وہ اس میں پہلے نمبر پہ آتی ہے، لیکن نازل سب سے پہلی وحی کیا ہوئی؟ ایک قرآن پڑھنے کے اوپر اتنا زور ہے کہ پہلا ورڈ ہی آپ دیکھیں کیا ہے. یا کسی اور دین میں پڑھنے لکھنے کے اوپر اتنی زیادہ شدت سے اس کو انفسائز کیا گیا ہے؟ پھر بھی اگر ہم جاہل رہیں اور علم لینے کو وہ باعث آر سمجھیں، یا یہ سوچیں کہ اس عمر میں آ کے ہم علم لیں گے تو شرم آئے گی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں آیت نمبر 28 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरते वही हैं जो इल्म वाले बंदे होते हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह का खौफ दिल में आए, क्योंकि अल्लाह का खौफ आएगा तो गुनाहों से बचेंगे, तो अल्लाह ताला का खौफ दिल में लाना चाहते हैं तो इल्म लेना होगा। जो बेइल्म रहता है ना, वो बेखौफ रहता है, ना डर रहता है। और इस इल्म से आपके दर्जे बुलंद होंगे, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मुजादला में आयत नंबर 11 में, यरफाउल्लाहुल्लदीना आमनू मिनकुम वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात। तुम में से मोमिनों के दो लोगों के अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला बुलंद करता है दर्जे, मोमिनों के और इल्म वालों। जिसका इल्म जितना ज्यादा होगा उसका दर्जा भी उतना ही ज्यादा होगा अल्लाह के यहाँ, कितना बुलंद दर्जा होगा। अगर चाहते हैं कि अल्लाह के यहाँ बुलंद मकाम पाए, बुलंद दर्जे पाए, तो कुरान बता रहा है आपको कि इल्म वाले अपने इल्म की बिना पे अल्लाह के यहाँ दर्जे बुलंद पाते हैं। इब्ने अब्बास ने फरमाया कि उलमा को आम मोमिनों पे 7 दर्जों की बुलंदी नसीब होगी, 7 लेवल्स ऊपर होंगे उनसे, और हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल का फासला होगा। यानी जितना सवार 500 साल तक चलना चाहे तो जितना फासला वो तय करता है ना, उतना ऊंचा दर्जा होगा। 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला होगा, तो सोचे 7 दर्जे बुलंदी। और जैसे जैसे दर्जे बुलंद होंगे, नेमतें ज्यादा होंगी, राहतें ज्यादा होंगी, इज्जतें ज्यादा होंगी, मकाम ज्यादा होगा, अल्लाह का कुर्ब ज्यादा होगा। और सोचे कितना कुछ मिलेगा। ये दर्जे का मतलब ऐसे ही नहीं है कि आप दुनिया में दर्जे देख लें, उसमें ही फर्क हो जाता है। तो कहां वहां के दर्जे, तो क्या बात है उनकी। हर चीज में, हर नेमत में इजाफा होगा। तो नीचे रहना चाहेंगे या ऊपर जाना चाहेंगे, ऊपर के दर्जे पाना चाहेंगे। देखिए, दुनिया में हम चाहते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बुलंद से बुलंद हो, बेहतर से बेहतर हो, शानदार हो, तो आखरत में क्यों नहीं। और इसका एक तरीका जो कुरान बता रहा है वो क्या है, इल्म। इल्म लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके साथ अल्लाह ताला खैर का इरादा करना चाहे उसको दीन की समझ अता फरमाता है। जिसको अल्लाह खैर देना चाहता है ना, कोई भलाई देना चाहता है, तो उसको क्या देता है, दीन की समझ। तो अपने आप को खुशकिस्मत समझें अगर आपको दीन की समझ अल्लाह ताला अता फरमाता है। समझ में अल्लाह ने आपके साथ भलाई का इरादा किया, आपकी बड़ी खुशकिस्मती है। ये अल्लाह की तरफ से खैर की निशानी है कि दीन समझ आने लगा। आप देखिए ना, इल्म के जरिए इंसान बार दफा ऐसी बातें सीख लेता है कि कभी कभी छोटे से काम से भी उसको बड़े आला दर्जे मिल जाते हैं। तो उसको पता होता है ना कि इस काम से अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, इस काम से मिलेगा, ऐसे करने से मिलेगा, तो वो ज्यादा जल्दी दर्जे बुलंद उसके होते जाते। इसीलिए आलिम जो है, इल्म वाला जो है, उसको आबिद पे, एक इबादत गुजार पे ऐसी फजीलत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसी मुझको तुमसे एक अदना आदमी, कहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और कहां इस उम्मत के आम अदना आदमी का। फरमाया इतना फर्क है एक आलिम और आबिद में। हम बार दफा इबादत में बहुत मेहनत करना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं कि बस आज का दिन हमें छोड़ दो, हम इबादत करें। लेकिन इबादत के ऊपर भी इल्म को फजीलत। इबादत गुजार भी मेहनत कर रहा है मगर उन्हीं चीजों को किए जा रहे हैं। जैसे एक टाइपिस्ट है और एक अनाड़ी आदमी, वो अनाड़ी भी टाइप करता है लेकिन उसकी टाइपिंग और एक टाइपिस्ट की टाइपिंग में कितना फर्क होता है। तो इसी तरह एक आलिम जो है वो अपने इल्म की बुनियाद पे जब अमल करता है ना उसकी और इबादत करता है, उसकी इबादत में बहुत फर्क होता है उससे जो एक रटी रटाई कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने इतने बुलंद मकामात अता फरमाए इल्म वालों को, हत्ता के अपने नबी को अल्लाह ताला ने दुनिया में मबूज फरमाया, तो उनकी बेसत का एक मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 में, वलकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहकीक अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पे। क्या एहसान किया? इज बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उनमें रसूल भेजा उन्हीं में से। जो क्या करता है, उसके क्या काम है? तीन काम बताए। यतलु अलैहिम आयातिहि, वो तिलावत करता है उन पर उसकी आयात, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, सिखाता है उनको किताब और हिकमत। एक आयते पढ़ के सुनाता है और क्या करता है? तज़किया करता है, उनको पाक करता है, और उनको किताब की तालीम देता है। हिकमत से तो मुराद हदीस है उलमा ने, लेकिन यहाँ से क्या पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज मनसबी में क्या था? इसी किताब की तिलावत और इसी किताब की तालीम। हालांकि वो लोग तो अरबी थे, उनकी जुबान थी, वो तो सबसे ज्यादा इस जुबान के माहिर थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया उनकी तरफ कि इनकी तालीम का इंतजाम किया जाए, इनको सिखाया जाए। गोया ये कुरान सीखने की चीज है, ठीक है? ये कुरान पहले देखिए आया, तिलावत भी ठीक है, तिलावत में भी क्या माना आता है कि माने को फॉलो करके पढ़ा जाए, वो भी है, लेकिन एक तालीम होता है ना, तालीम में क्या है, बतदरीज और एहतमाम के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इल्म दिया जाए। तो कुरान पाक दूसरी किताबों की तरह नहीं है कि बस मजमून समझ लिया और दैट्स इट। इसके अल्फाज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अल्फाज के माने भी और उनकी तफसीर भी, क्योंकि ये सब चीजें अल्लाह ही की तरफ से आई हैं, इसकी तफसीर भी अल्लाह ही की तरफ से है जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन नास इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, ए लोगो इल्म सीखने से आता है, यानी इल्म सिर्फ रीडिंग कर लेने से नहीं आता, सिर्फ सुनने से नहीं आता, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं आता, सीखने से आता है। सीखने से, लिसनर होने से इल्म नहीं सीखोगे। सीखने में क्या होगा? अकल भी इस्तेमाल होगी, आंखें भी इस्तेमाल होंगी, कान भी इस्तेमाल होगा, जहन भी इस्तेमाल होगा, हाथ भी इस्तेमाल होगा, है ना? तो इल्म सीखने से आता है। कोई भी इंसान माँ के पेट से पैदाइशी इल्म लेके नहीं आता, इल्म को सीखता है तो इल्म आ जाता है, ठीक है? तो हम इल्म सीखने के लिए आए हैं, ये इल्म बड़ी दौलत है, ये अल्लाह का खौफ भी पैदा करेगी, इसकी मोहब्बत भी पैदा करेगी, गुनाहों से बचने का आपको हिम्मत भी देगी और नेकी करने के लिए कुव्वत भी देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलील इल्म कसरत से की जाने वाली इबादत से बेहतर है, यानी इंसान इबादत गुजारी में चाहे कितना ही आगे निकल जाए। आज लोग कहते हैं नहीं मैं तो कुरान पढ़ती रहती हूँ घर में, मैं इतना पढ़ती हूँ। एक तो ये यहाँ पे पता चल गया ना कि सीखने से आता है, पढ़ने से, कि घर में आप किताबें पढ़ रही हैं उससे इल्म नहीं आ जाएगा। बाज़ लोग कहते हैं हमने बड़ी तफसीरें पढ़ ली, तो तफसीरें पढ़ लेने से इल्म नहीं आता जब तक आप किसी उस्ताद से ना सीखें। दूसरी क्या बात है कि इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। जो लोग कहते हैं कि हम बस हमने कितनी दफा इसको खत्म कर लिया यानी पढ़ पढ़ के, तो इबादत, ये इबादत हो गई, हम इतनी तस्बीह करते हैं, या हमें तो पहले ही नमाज कुरान पढ़ना आता है, आप हमें और क्या सिखाएंगे, तो वो इबादत है, ये तालीम है, दोनों में फर्क है। इसमें जो जिस तरह से आपको भलाई मिलेगी, अजर मिलेगा, वो सिर्फ इबादत करने से नहीं मिलेगा। इससे पता चलता है कि इल्म वाला इबादत गुजार तो कितना आगे निकल जाता है। इसीलिए आपने कहा ना, मैं ना कलील इल्म भी कसरत से की जाने वाली इबादत से बेहतर, थोड़ा इल्म भी। तो इल्म वाला अपने इल्म की वजह से तरक्की पाता है, अपने इल्म की वजह से आगे निकलता है, अपने इल्म की वजह से जाहिल इबादत गुजार से बेहतर होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, मेरी बात नहीं है, इसलिए इसको गौर से सुनो। तअल्लमुल इल्म, इल्म को हासिल करो, इल्म को सीखो। ये मैं नहीं कह रही, आपका हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हुक्म हमारे लिए क्या है? फर्ज है। ये नहीं कि ये नहीं कहा गया जिसका जी चाहे सीखे, जिसका जी चाहे ना सीखे, मर्द सीखे औरतें ना सीखे। ये हुक्म अल्लाह के रसूल का आम है। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहू, जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे रहे हैं, हमें इसको लेना है। इस इल्म की कदर को पहचानिए। और अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है, ये हदीस बयान करते हैं कि कुरान करीम सिफारशी है, जिसकी सिफारिश कबूल होगी, और झगड़े का फरीक है जिसकी तस्दीक की जाती है। ये इसकी बात मानी जाएगी। जो शख्स इसको अपना इमाम बनाएगा, इमाम कैसे बनाया जाता है? इमाम क्या क्या कौन होता है? आप इमाम बनाते हैं ना मस्जिद में, क्या होता है फिर? जो जो इमाम कर रहा होता है आप वही फॉलो कर रहे थे, राइट? ऐसे ही है ना। तो कुरान को इमाम कैसे बनाएंगे? जो जो कुरान कह रहा है वो करता जाएगा, तो ये उसे जन्नत में ले जाएगा, और जो इसे पसे पुश्त डालेगा ये इसको जहन्नुम में ले जाएगा। सुन लिया ना? जो इसको पीछे डालेगा ना, ये खुद लेकर जाएगा उसको जहन्नुम। इसका मतलब है इसकी वजह से लोग जन्नत में भी जा सकते हैं और इसी की वजह से लोग जहन्नुम में भी जा सकते हैं। ये सारों के लिए नहीं सिफारिश कर देगा कि हाँ ये सारे ही ठीक है क्योंकि उम्मते मुहम्मदी हैं। तो सिफारिश करने का मतलब ये है कि ये अपने पढ़ने वाले के लिए, सीखने वाले के लिए, अमल करने वाले के लिए सिफारिश करेगा, जो अल्लाह ताला कबूल करेंगे। और जिस किसी के खिलाफ ये फरीक बनेगा कि इसने मेरे मुझे नहीं पढ़ा, इसने मेरे मुझे नहीं सीखा, इसने मेरे ऊपर अमल नहीं किया, तो इसकी बात मानी जाएगी, ठीक है ना। ये बात तो ऐसे सिफारशी होते ना, उनकी बात नहीं मानी जाती, लेकिन ये वो सिफारशी है, चाहे किसी के हक में बोले या खिलाफ बोले, इसकी बात सुनी जाएगी। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स कुरान पाक पढ़ता है वो ऐसे ही है जैसे अपने पहलुओं में नबुवत को समेट रहा है। क्योंकि ये कलाम किस पे उतरा? नबी पे। तो वो ऐसे ही है जैसे नबुवत को समेट रहा है। ये वही का इल्म है ना, ये नबी की मीरास है। मगर इसकी तरफ वही नहीं की जाती, यानी वही तो नहीं मेरे पास डायरेक्ट आ रही, मगर जो वही आई थी वही मैं अपने पास समेट रही हूँ ना। तो समझ ले नबुवत को समेट रहे। और जिस शख्स ने कुरान पढ़ा, फिर इसने किसी शख्स के मुतालिक ये ख्याल किया कि उसे कोई चीज इस नेमत से बढ़कर दी गई है जो मुझे अता हुई है, तो उसने इस नेमत की तहकीर की है जो अल्लाह के यहाँ बाअज़मत। ये बात समझ आई? और उस चीज की जो अल्लाह ताला के यहाँ हकीर थी उसकी ताज़ीम की है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको थोड़ा सा, कि यानी जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक का इल्म दिया, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ आ रहे हैं कुरान पाक के इल्म लेने के लिए। अब क्या है, आप कोई दुनिया की चकाचौंध देखते हैं, कोई किसी के पास कोई नेमत देखते हैं, आप आपके दिल में होता है हाय काश मेरे पास भी ये हो, और हाय उसको ये मिल गया और मुझे नहीं मिला, हाय मैं इस टाइम पे अगर जॉब कर लेती तो मुझे इतने पैसे मिल जाते, और मैं देखो जॉब छोड़ के तो मैं अब इसके लिए टाइम निकाल रही हूँ, इसकी वजह से मेरे पैसों में कमी हो गई, या इसकी वजह से मेरे और हो सकता मैं भी अपना घर इतना डेकोरेट रख लेती, हो सकता मैं भी अपने आप को इतना सजा संवार लेती, मुझे तो कपड़े बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, मुझे तो अच्छे अच्छे खाने बनाने की फुर्सत नहीं मिलती, ये बस सारा इस क्लास का कसूर है, इस कुरान का कसूर है। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जिसने कुरान पढ़ा, फिर उसने किसी शख्स के मुतल्लिक ये ख्याल किया कि उसको, मतलब किसी और के बारे में उसने सोचा कि उसको जो चीज मिली है वो इस नेमत से बढ़ के है जो मुझे मिली है, उसको ये नहीं कदर के देखो मैं मुझे जो मिल रहा है वो कितनी बड़ी चीज है, मुझे तो कुरान का इल्म मिल रहा है, पर इसके पास तो ये दुनिया के चंद टके आ गए, मुझे जो नेमत मिल रही है उसके सामने हर नेमत हकीर है। तो उसको ऐसे नहीं लगता, उसको उलट लग रहा है, उसको हाय हाय निकल रही है कि उसके पास क्या है। तो उसने ऐसे शख्स ने क्या किया, उसने तहकीर की, उसने इस चीज को कम जाना है, इसको हकीर जाना है, जो अल्लाह ने ये नेमत उसको कुरान की दी है ना, उसको वो उसने हकीर समझा है, इसलिए कि वो इसके मुकाबले में दूसरों को देख के हाय हाय करता है और उसके मुंह में पानी आता है और उसको ये होता है कि वो मेरे से आगे बढ़ गए, मैंने अपने साल इसमें लगा दिए, लोगों ने कितनी कमाइयां कर ली और कितनी आगे निकल गए, और वो चीज जो अल्लाह के यहाँ हकीर है यानी ये दुनिया, उसकी इसने ताज़ीम की है, उसकी इज्जत कर रहा है। तो ये बात बहुत सोचने वाली है, हम जो इंशाल्लाह ताला अपना सफर शुरू करने वाले हैं तो इस बात को जहन में रखिएगा, क्योंकि आपके सामने हो सकता है लोग आए और आपके मुंह में कभी पानी आए उनका कोई नेमत देख के, और आपको ये हो कि चलो छोड़ो इसको मैं उधर जाती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं कि हमें कुरान सीखने की तरगीब फरमाई और इसकी फजीलत भी इरशाद फरमाई। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इसकी तरगीब देते थे, मोटिवेट करते थे लोगों को कुरान सीखो और इसकी फजीलत बयान किया करते थे ताकि लोगों में शौक पैदा हो, और हुक्म फरमाया कुरान सीखा करो, ये जो मैं आपको हदीस पहले बताई, और इरशाद फरमाया कुरान अपने पढ़ने वाले के पास कयामत को ऐसे वक्त में आएगा जबकि वो इसका बहुत ज्यादा मोहताज होगा। आपको पता है ना कयामत का दिन कितना मुश्किल दिन है, और उस दिन इंसान बड़ा मोहताज होगा, तो उस दिन ये कुरान आएगा और आके क्या करेगा, एक बहुत हसीन शक्ल में उसके पास आके पूछेगा मुझे पहचानते हो, वो कहेगा तुम कौन हो, कहेगा मैं वो ही हूँ जिससे तू मोहब्बत करता था, जिसकी तू इज्जत करता था, मेरी वजह से तू रातों को जागता था, दिन को पढ़ने की तमन्नाएं रखता था। इस पे वो कहेगा शायद तू कुरान है, क्योंकि वो वाकई ऐसे करा करता था। फिर वो उसे अल्लाह के हजूर लेकर आएगा, ये कुरान अल्लाह के हजूर लेकर आएगा। अब क्या होगा, शहनशाही दाएं और जन्नत बाएं तरफ कर दी जाएगी, बादशाही ताज इस शख्स के सर पर रख दिया जाएगा, और उसके मुसलमान वालदैन को भी दो हुल्ले पहनाए जाएंगे जिनकी कीमत दुनिया से भी कई गुना ज्यादा होगी। वो पूछेंगे ये हमें कैसे मिल गए जबकि हमारे आमाल तो इस लायक नहीं थे। उनको कहा जाएगा तुम्हारी तुम्हारे बेटे या बेटी की बदौलत जो कुरान की तिलावत किया करता था, इसको सीखा करता था, इसको पढ़ा करता था, इसको इसका इसको साथ लेकर चलने वाला था। सुभान अल्लाह, आज हो सकता है किसी के दिल में इतनी अहमियत ना हो इस कलामे पाक की, या ऊपर ऊपर से हो कैसे तो सारे ही मुसलमान है कि हाँ कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे है, मगर हम अपने अमल से दिखाते कि हमें इस चीज के यकीन नहीं है दिल में, उस तरह से यकीन नहीं है कि जैसे हमें ये यकीन है कि इस वक्त दिन निकला हुआ है, कोई नहीं इस वक्त कहेगा कि नहीं इस वक्त रात है, किसी को भी शक नहीं, सबको पता है दिन है। क्या इसी तरह ये यकीन है, ये कुरान जो है हमारा सिफारशी बनेगा, ये हमारा दुनिया और आखरत का साथी बनेगा, इसका हमें फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा, इसके फवायद, इसके अजायब, इसकी बरकात कितनी है, कितनी ज्यादा है, ये तो आपको जब कुरान के साथ आप ताल्लुक जोड़ेंगे ना, तो जब इसकी बरकतें खुलने लगती हैं और जैसे जिंदगियों में तब्दीलियां आती हैं, और फिर जैसे एक कदम से दूसरा और दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा पड़ता ही चला जाता है, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? कभी ये सोचा? शुरुआत उस पहले कदम से हुई थी जो आपने उठाया था इस कुरान की तरफ, फिर आगे आपके कदम बढ़ते ही गए, कहीं कोई हिफ्ज कर रहा है, कहीं कोई तजवीद सीख रहा है, कहीं कोई इसके और उलूम सीख रहा है, कहीं कोई हदीस सीख रहा है, लेकिन पहला कदम तो इसको सीखने से ही शुरू हुआ था ना। वो जो सारे उलूम बाद में आप ले रहे हैं, वो इसी की बरकतों से शुरू हुए थे कि जब आपने पहली दफा इसके साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आहिस्ता तिलावत करने वाला, इसकी इस कुरान की आहिस्ता तिलावत करने वाला छुपा के सदका करने वाले की तरह, और इसकी ऊंची आवाज में तिलावत करने वाला एलानिया सदका करने वाला करने वाले जैसा। यानी इसका मतलब है कि ऊंची आवाज में भी कर सकते हैं लेकिन आहिस्ता करोगे, यानी दो लोगों के रियाकारी ना हो इस खातिर जरा आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो वो और भी अच्छा है। कभी हो जाता है ना कि इंसान ऊंची आवाज में इसलिए तो नहीं करता, मगर दिल में ख्याल आ ही जाता है। इसी तरह हजरत अबू दरदा जो थे, वो उनके पास अबू लईस आए, वो दमिश्क की मस्जिद में बैठे हुए थे, तो ये आके कहने लगे, ए अबू दरदा, मैं आपके पास मदीना से एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि आप ने उसको बिना वास्ता यानी डायरेक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। अबू दरदा ने कहा, क्या सिर्फ यही मकसद है, तिजारत वगैरह या कोई और मकसद तो नहीं है? कहने लगा, नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ। अबू दरदा ने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, फरमाते थे, जो शख्स इल्म की तलब में एक रास्ता तय करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता आसान फरमा देते हैं। यानी इल्म सीखने के लिए आप जिस जब रास्ते पे चलते हैं, यानी अब आप ये इल्म के रास्ते पर आ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत का रास्ता क्या कर देते हैं? इजी कर देते हैं, आसान कर देते। जन्नत तक पहुंचना फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, फिर जन्नत आसान हो जाएगी आपके लिए, उसको पाना आसान हो जाएगा। और फरमाया, और फरिश्ते तालेब इल्म पर खुश होकर उसके सामने अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, फरिश्ते किस पे खुश होते हैं? स्टूडेंट्स पे। ये कुरान की तालेब इल्म है, ये आम लोग नहीं है, उनके सामने अपने पर बिछाते हैं। और इल्म वाले के लिए आसमान और जमीन की कुल मखलूक इस्तगफार करती है, और मछलियां पानी की तहों में इस्तगफार करती हैं। अब कि आप मछलियां देखें तो सोचिएगा कि इल्म वाले के लिए ये मछलियां भी इस्तगफार करती हैं। और इल्म वाले की फजीलत इबादत करने वाले पर ऐसी है जैसे 14वीं के चांद की फजीलत तमाम सितारों से। 14वीं का चांद कैसे चमकता है ना सितारों के बीच में, इसी तरह एक इल्म वाला इबादत गुजार के मुकाबले में। और जो इल्म वाले होते हैं, उलमा होते हैं, वो अंबिया के वारिस हैं, क्योंकि अंबिया ने कोई दिरहम दिनार मीरास में नहीं छोड़ा होता, उनकी विरासत में कोई जायदादें नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उनकी विरासत क्या है? ये इल्म है, दीन का इल्म, वो उन्होंने छोड़ा। अब कौन है जो इस मीरास को समेटना चाहता है, कौन है जो उनका वारिस बनना चाहता है, कौन है अंबिया की मीरास में हिस्सा लेना चाहता है? अंबिया की मीरास इल्म में, तो जिस किसी ने इसे हासिल किया उसने बहुत बड़ा हिस्सा वसूल कर लिया। सुभान अल्लाह, ये है इल्म की फजीलत, ये आम चीज नहीं है। समझ लें, आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में से हिस्सा मिल रहा है, उनकी विरासत में से। हम उस वक्त तो नहीं थे, कि हम वहाँ पे कोई उनकी तो कोई चीजें थी नहीं ऐसी, कोई आप उनकी कोई मकान ले लेते या कोई और चीजें सोचे उनकी विरासत की, आपकी कोई प्यारा हो और वो दुनिया से चला गया हो, तो उसकी जो चीज पीछे उसने छोड़ी होती है, आप कितने शौक से उसको रखते हैं कि मेरी उसकी फलां की निशानी है, ये फलां की मीरास है। किसी की वालदा दुनिया से चली जाए, उनके कपड़े संभाल संभाल के रखते हैं, उनकी चीजें संभाल संभाल के रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मीरास ये इल्म है, आप इसको कितने शौक से लेना चाहेंगे? अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो फिर तो सर आंखों पे रखेंगे इसको। और इनकी एक और फजीलत देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मस्जिद में तशरीफ लाए, वहां पे दो मजलिसें लगी हुई थी, एक में अल्लाह का जिक्र हो रहा था और दूसरे में इल्मी बातें हो रही थी, इल्म के मसले मसाइल के ऊपर बातें हो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों मजलिसें खैर पे हैं, यानी दोनों ही मजलिसें अच्छी हैं भलाई पे, लेकिन एक मजलिस दूसरी से बेहतर है। ये जिक्र करने वाले लोग अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वो चाहे तो अता कर दे और चाहे तो ना दे, और ये लोग जो इल्म सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, और मैं भी मुअल्लिम बना के भेजा हूँ, लिहाजा ये उनसे अफजल है। फिर इन्हीं लोगों के पास बैठे, इन वालों के साथ बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेफर किसकी मजलिस को किया? जो इल्म सीख रहे सिखा रहे थे। कितनी बाबरकत है ये मजलिसों की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा था उस मजलिस को छोड़ के इस मजलिस को अपनाया। इसी तरह अबू दर्दा फरमाते हैं कि एक मसला सीखना, इल्म का एक मसला सीखना रात भर के कयाम से मुझे ज्यादा पसंद, मैं रात भर अल्लाह के आगे खड़ा रहूं कयाम करूं, उससे बेहतर कि मैं इल्म का एक बात इल्म की सीखूं। और एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह के लिए इल्म हासिल करता है, अब ये भी हम बात करेंगे कि नियतें क्या हैं हमारी, इंशाल्लाह उसको भी बात होती है, लेकिन यहाँ पे ये कि जो कोई अल्लाह के लिए इल्म हासिल करता है वो दिन के रोजेदार की तरह और रात की इबादत गुजार की तरह, और जो इल्म का सिर्फ एक चैप्टर सीखता है एक बाब सीखता है उसके लिए अबू कुबैस पहाड़ के बराबर, उस सोने से बेहतर है जिसे वो अल्लाह की राह में खर्च करे। अबू कुबैस पहाड़ जो है ना, जमीन पे जो पहला पहाड़ था अरब के पास ही है, तो वो इतना बड़ा पहाड़ है उसके बराबर अगर कोई इंसान सोना उसके पास हुआ और वह सारा सोना अल्लाह के रास्ते में दे देना, उससे बेहतर है जस्ट वन चैप्टर इल्म का सीखना। मैं कहती हूँ हमने तो कभी इसको ऐसी कदर ही नहीं दी, ऐसी इसकी अहमियत पहचानी ही नहीं कि इसकी फजीलत कितनी है, इसके ऊपर आपको अजर कितना मिल रहा है, आपके बैठने पे, आपके सुनने पे, आपके लिखने पे, आपके इसके लिए अपना जहन इस्तेमाल करने के, आपके याद करने के, एक एक चीज के ऊपर आप कितना बड़ा अजर पा रहे हैं, जब एक चैप्टर सीखने के ऊपर ये है कि इतने बड़े पहाड़ की माने आपने सोना सदका कर दिया, कितना बड़ा अजर मिले आपको। लेकिन हो सकता है आप $10 अल्लाह के रास्ते में देने को तो अजर समझे, लेकिन कुरान की तालीम लेने को इतनी बड़ी चीज ना समझे। 10 मिनट अगर आपको ज्यादा बैठना पड़ जाए तो उसको वो आपके लिए भारी हो जाए। हाँ, लेकिन आपको ये हो के हाँ जो मैं भाग के जाती हूँ और जुमा पढ़ने चली जाती हूँ, गो के जुमा औरत के लिए फर्ज है ही नहीं। यार यहाँ पे आप देख रहे हैं इबादत से ज्यादा क्या है, इल्म की फजीलत है।